हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इतना बोलते हुए अनय तुरंत ही दूसरी तरफ मुड़ गया और वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से मनस्वी ने कहा, कैसी लग रही हो ये तो बता दो। मनस्वी के इस सवाल पर अनय का दिल बहुत ही तेजी से धड़का और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था तो मनस्वी उसके एक्सप्रेशन नहीं देख पाई, लेकिन वो अपनी जगह से चलकर थोड़ा सा आगे आई। मनस्वी को बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा है तो उसे लगा कि अनय उसके लुक, हेयर स्टाइल, मेकअप, कपड़ों में से किसी चीज की तो तारीफ कर ही देगा और वो काफी अच्छी तो दिख रही है। लेकिन अनय कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही दरवाजे से अंदर आई हुई एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, आई कांट बिलीव, ये सच में आप हैं। अनय पहले ही दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था तो उसे सामने से अंदर आता हुआ मनस्वी का बॉडीगार्ड दिख गया और मनस्वी की उसके पीछे ही आ रही थी तो उसने भी अंकित को देख लिया और उसकी ऐसी बात सुनकर मनस्वी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि अपने लिए ये बात वो शायद अनय के मुंह से सुनना चाहती थी। अनय को उसे सामने देखकर ही गुस्सा आ गया, तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हो और तुमसे नहीं पूछा उसने, बेवजह हर चीज में अपना ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो जिससे पूछा था उसने तो कुछ नहीं कहा, इसीलिए ही जिससे नहीं पूछा था उसने बोल दिया, और वैसे भी क्या हो गया, मैं सच ही तो बोला है, मैं आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, ऐसे में तो आपको शायद वो अटैकर पहचान भी नहीं पाएगा। घर के अंदर जाकर अंकित मनस्वी के एकदम सामने खड़ा होता हुआ बोला तो उसकी इस बात पर मनस्वी ना चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ये तो फिर अच्छी बात है ना, अटैक करने वाले मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर तुम्हें भी साथ आने की क्या जरूरत है अब। मनस्वी की ये बात सुनकर अंकित को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया है तो तुरंत ही वो अपनी बात का तर्क करते हुए बोला, अरे नहीं मैम, फिर भी खतरा तो हो सकता है, आखिर आपका नाम, पर्सनैलिटी वो सब तो जानते ही है ना लोग, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। अनय वहां पर खड़ा हुआ एकदम क्लूलेस होकर कन्फ्यूजन से उन दोनों की बातें सुन रहा है और अंकित उसे इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ गया। अनय उन दोनों को बात करते देखकर काफी इरिटेट हो रहा है और मनस्वी भी जिस तरह से मुस्कुराकर उससे बात कर रही है इससे अनय का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है और वो एकदम से उन दोनों के बीच आते हुए बोला, कौन सा अटैक, कैसा रिस्क, ये क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, और मुझे कोई कुछ बताया या नहीं, कैसे हस्बैंड हो तुम, कुछ भी पता नहीं रहता है तुम्हें, अंकित ने उसे ताना मारते हुए कहा। अनय ने भी उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा, हाँ तो हस्बैंड हूं मैं, बॉडीगार्ड नहीं जो ये सारी चीज भी बता रखो, और वैसे भी मुझे पता होता है, लेकिन तुम अभी जो बोल रहे हो बस उसे बारे में ही पूछ रहा हूं, लेकिन तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मनस्वी तुम बताओ। इतना बोलते हुए अनय ने मनस्वी की तरफ देखा तो मनस्वी ने उसे अंकित के साथ कॉल पर हुई पूरी बात बता दी। पूरी बात जानकर अनय नाराजगी से बोला, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो, अगर मैं अभी भी ना पूछता तो शायद तुम मुझे अभी भी ना बताती, है ना। अरे नहीं, वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है और ऐसी धमकियां तो मिलती ही रहती हैं, और क्या तुम इतनी सी बात का इशू बना रहे हो, चलो हम पार्टी में भी तो चलना है, मनस्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अनय ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टी में चलना, अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा है घर से बाहर निकलने में तो फिर रहने दो, हम नहीं जाते हैं, मैं आदित्य को बाद में समझा दूंगा, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अनय की बात पर मनस्वी से पहले ही अंकित ने बोल दिया, नहीं अगर मैं मैडम के साथ जा रहा हूं तो उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, इसीलिए वो जा सकती है जहां भी जा रही है, तुम क्यों उन्हें रोक रहे हो। अनय ये बात सुनकर सच में मनस्वी के लिए परेशान हो गया था और इसके लिए वो पार्टी में जाना भी कैंसिल कर देता, लेकिन जब उसकी बात पर अंकित ने बीच में बोला तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसने किसी तरह से अपने दांत पीसते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अंकित की बजाय वो मनस्वी से बोला, मनस्वी प्लीज इसे समझा दो कि इसे हमारे बीच बोलने का कोई भी हक नहीं है और ये बॉडीगार्ड है तो बस अपना काम करे, बाकी हमें क्या करना है क्या नहीं वो मैं इसे नहीं पूछूंगा। मुझे भी तुम्हारे बीच बोलने का कोई शौक नहीं है, मुझे बस मैडम की फिक्र है और मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, अंकित भी एकदम बेरुखी से उसकी बात का जवाब देता हुआ बोला और उन दोनों के बीच बात पड़ते देख मनस्वी उनके बीच आई हुई बोली, क्या शुरू कर रहे हो तुम दोनों, चलो पार्टी में जाना कैंसिल नहीं करना है, चलो अनय मेरी इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से तैयार हुई हूँ मैं, और अंकित तुम चलो जाकर कार में बैठो, हम दोनों आते हैं। ये हमारे साथ क्यों आएगा, इसे बोलो अलग से आए, अपनी बाइक, कार या जिससे भी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा और तुम भी इसके साथ नहीं जाओगी, अनय तुरंत ही उसकी बात काटता हुआ बोल पड़ा। उसकी ये बात सुनकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ अंकित भी रुक गया और पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ देखने लगा, तभी मनस्वी ने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया और उसके जाते ही मनस्वी अनय का हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ है तुम्हें आज, आज से पहले तो कभी तुम्हें अंकित से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आज क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हो? और उसने जब मुझे धमकी के बारे में बताया तो मैं ही उसे यहाँ पर आने और हमारे साथ चलने को कहा था। ऐसे में वो अलग से आएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो? मनस्वी ने अनय को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अनय उसकी ये बात सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हुए बोला, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे रहते भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें शायद उस पर ज्यादा भरोसा है। होगा भी क्यों नहीं, आखिर पर्सनल बॉडीगार्ड है वो तुम्हारा, और उसे भी कुछ ज्यादा ही फिक्र है तुम्हारी, शायद मुझसे भी ज्यादा। इतना बोलते हुए अनय का चेहरा मायूसी से लटक गया, क्योंकि वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा है। और अंकित ने जिस तरह से मनस्वी की तारीफ की वो भी उसके सामने, और वो कुछ नहीं कर पाया। वो सारी बातें भी उसके दिमाग पर सीधा असर कर रही हैं, इसीलिए एक इनसिक्योरिटी उसके मन में आ गई है, जिसे वो पूरी तरह से मनस्वी के सामने भी नहीं रख पा रहा है। अनय की इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं मनस्वी समझ गई है, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा है कि अनय उसे लेकर पजेसिव हो रहा है, और उसे अंकित के बिहेवियर की वजह से उसे जलन भी हो रही है। इसीलिए उस वक्त मनस्वी ने कुछ नहीं कहा, और मन ही मन हल्का सा मुस्कुराकर इस बात का फायदा उठाने की सोची। इसके बाद मनस्वी ने एकदम नॉर्मल स्ट्रेट फेस बनाते हुए कहा, चलो आप चले, पार्टी ओवर हो जाएगी तब पहुंचेंगे क्या हम? पहले ही 8 बजने वाले हैं, टाइम देखो। मनस्वी की ये बात सुनकर अनय ने भी कुछ नहीं कहा, और वो दोनों साथ में ही वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो दोनों कार के पास पहुंचे, अनय ने देखा कि अंकित पहले ही ड्राइवर के साथ आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ है और खिड़की से बाहर मनस्वी की तरफ ही देख रहा है।
उसके इस तरह से देखने पर अनय ने भी मनस्वी को एकदम गौर से नोटिस किया, तो उसे समझ आया कि वो सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पहले से अलग लग रही है। साथ ही इतनी खूबसूरत थी, उसको देखकर किसी की भी सांस गले में ही अटक जाए, और शायद इसीलिए अंकित भी उसे पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। लेकिन मनस्वी को इसकी ज़रा भी भनक नहीं लगी, क्योंकि उसकी तो नज़र सिर्फ और सिर्फ अनय पर थी। अनय ने जैसे ही अंकित को नोटिस किया, उसने तुरंत ही मनस्वी का हाथ फिर से पकड़ लिया, क्योंकि वहां तक चलकर आते हुए वो दोनों आगे पीछे एक दूसरे से कुछ दूर हो गए थे, और अनय सहज ही मनस्वी का हाथ छोड़ दिया था। लेकिन अभी जब उसने उसका हाथ पकड़ा, तो मनस्वी ने भी खुशी खुशी कस कर उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी तरह वो दोनों कार में पीछे की सीट पर आकर बैठ गए, और उनके बैठने ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ पुश्तैनी बंगला, स्वीटी बहुत ही प्यारा सा ब्लैक रेड कलर का लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहनकर रेडी है, और वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है। इसके अलावा उसके माथे पर बोल पड़े हुए हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी परेशान भी है। एक कमरे के सामने रखकर स्वीटी ने कसकर उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, भैया भाभी कितना टाइम लगाओगे आप दोनों, थोड़ा तो जल्दी करो, सारे गेस्ट भी आना शुरू हो गए हैं और सारे लोग आपके बारे में ही पूछ रहे हैं, बताओ होस्ट ही गायब है पार्टी से। स्वीटी तुम चलो, हम बस 5 मिनट में आते हैं, कमरे के अंदर से आदित्य बोला, तो उसकी बात सुनकर स्वीटी मुंह बनाकर वहां से चली गई, क्योंकि इसके अलावा तो वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो एकदम खोई हुई थी, सीढ़ियां उतर रही है, और तभी ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़कर आते हुए एक शख्स से टकराकर थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। लेकिन तभी दो मजबूत बाहें उसे अपनी कमर पर फील होती हैं, और वो सीढ़ियों से डिसबैलेंस होकर गिरने से बच जाती है। लेकिन गिरने के डर की वजह से वो एकदम कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिलैक्स, यू आर कम्प्लीटली फाइन, एक जानी पहचानी सी आवाज़ स्वीटी के कानों में पड़ी, तो उसने अपनी आँख खोलकर सामने देखा, तो उसे वहाँ पर जो शख्स नज़र आया उसे देखकर स्वीटी ने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी आ गए पार्टी में, और ऊपर वहाँ ऊपर चढ़कर कहाँ पर जा रहे हो? टू बी कंटिन्यूड।